मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। एफईआईएस के आज 27 दिसंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही स्वागत करता हूं दिवंजल यादव का जो जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं कुछ सूचनाएं आप सबको नियमित रूप से दिया करता हूं, तो वो सूचनाएं हैं कि कल और परसों डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन कल आप सबको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी, साथ ही साथ योजना पत्रिका के 2 आर्टिकल मिलेंगे और कुरुक्षेत्र के भी 2 आर्टिकल्स मिलेंगे, जिनमें 2 टोटल इंग्लिश के होंगे और 2 टोटल हिंदी के आर्टिकल होंगे। इसके साथ ही साथ एक वीकली क्वेश्चन होगा जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर आप सबकी प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और सूचना है कि हमारी जो वेबसाइट है उसके जब आप आर्टिकल सेक्शन में जाएंगे तो वहां आपको एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा जो मैंने लिखा है और उस आर्टिकल का टाइटल है आईएएस के स्टार वैल्यू के 2 मुख्य तत्व। रिपीट कर रहा हूं, आईएएस के स्टार वैल्यू के 2 मुख्य तत्व। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है और मैं चाहूंगा कि आप इस आर्टिकल को पढ़ें। छोटा सा आर्टिकल है लेकिन आपको मजा भी आएगा और साथ ही साथ जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसके प्रति हो सकता है कि आपके दिमाग में थोड़ी सी प्रतिबद्धता और गहरी हो जाए और सबसे बड़ी बात है कि आपको मजा आएगा, आप इसे जरूर पढ़िएगा। फ्रेंड्स आज के मुख्य विषय में मैं भूजल संसाधन को लेकर के कुछ बहुत विस्तार के साथ अलग अंदाज में बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं 1-2 चीजें आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। पहला है कि कल सूर्य ग्रहण संपन्न हो गया। आज अखबारों में सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ रोचक बातें भी हैं, टीवी चैनल्स पर भी आपने उसकी खबरें सुनी होंगी। यहां मैं अपने ऑनलाइन क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन्हें विशेष रूप से ये बताना चाहूंगा या यूं कह लीजिए कि निर्देश देना चाहूंगा कि ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स हैं उसमें 3-4 तरह के जो लेक्चर्स हैं उन्हें आप बहुत ध्यान से पढ़ लें और 1-2 दिन में ही सुन लें। पढ़ लें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप पहले लेक्चर सुने और इसके बाद फिर किताबों से उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ें। किसी भी विषय पर बहुत अच्छी पकड़ बनाने के लिए मुझे लगता है कि ये पद्धति बहुत वैज्ञानिक है। आप लेक्चर सुने, उसमें देखेंगे कि आप पृथ्वी की जो गतियां हैं दैनिक गति जिससे कि दिन रात हो रहे हैं और इसके बाद फिर वार्षिक गति है और इसके बाद कैसे सूर्य दक्षिणायन होता है उत्तरायण होता है इसके बारे में लेक्चर्स हैं और बहुत बहुत गंभीरता के साथ लेकिन सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है ताकि आपको इसका साइंस समझ में आ जाए। इसके बाद सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी इंडिपेंडेंट लेक्चर है, फिर ज्वार और भाटा के बारे में भी लेक्चर है, टाइड्स के बारे में, लो टाइड्स हाई टाइड्स के बारे में लेक्चर है। ये सच पूछे तो ये एक ही फॉर्मेट के हैं क्योंकि इन तीनों में आपको सूर्य मिलेगा, चंद्रमा मिलेगा और पृथ्वी मिलेगी। इनकी आपस में गतियां मिलेंगी और इनकी सिचुएशंस मिलेगी कि कौन कौन किस किस सिचुएशंस में है और उन्हीं सबसे इन सबका निर्धारण होता है। तो दोस्तों मेरा ये अर्ज है आप सबसे मेरी कि आप डेफिनेटली बिना किसी आलस्य के या टालने की नीति का सहारा लिए बिना ही आप इन लेक्चर्स को जरूर आज और कल में सुन लें। फ्रेंड्स अब एक और बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि आज के करेंट कंटेंट के तहत आप लोगों को एक आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है ईनाम NAM से इनाम तक। प्लीज आप इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ें, इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट कर लें। हालांकि जो ये जो आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है वो आपके पॉइंट के फॉर्म में ही है। ई नाम का मतलब है ई छोटा है इसमें और NAM है। NAM स्टैंड फॉर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। 2016 में केंद्र सरकार ने इस मार्केट की शुरुआत की थी। इसके पहले ई छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। तो यह एक तरह से ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां किसान जाकर अपने फसलों को बेच सकते हैं। इससे पहले जो मार्केट का जो सिस्टम था आज भी वह है, वह था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जहां मंडी में जाकर के किसान अपने अपना अनाज अपना उत्पाद बेचते थे, और इसको लेकर के बहुत देश में बहस चली, इसकी बहुत आलोचना हुई, इसका बहुत विरोध हुआ। तो केंद्र सरकार ने एक विकल्प के तौर पर यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, और चूंकि कृषि व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, किसानों की आय से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस लिहाज से मुझे यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रहा है। तो प्लीज आप इस आर्टिकल की अनदेखी बिल्कुल भी न करें। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और जो मुख्य विषय है वो भूजल संसाधन के बारे में मैं आप सब से कुछ बातें करने जा रहा हूं। कल भूजल अटल योजना के बारे में मैंने बहुत थोड़ी सी जानकारी आपको दी थी, और उसमें एक डेटा शायद मैंने नहीं बताया था कि ये कहा गया है कि हमारे जो गांव हैं उनमें इसके माध्यम से पानी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। वो जल मिशन है कि 18 करोड़ परिवार हैं, अभी 2 करोड़ तक पहुंच 3 करोड़ घरों में पहुंचता है, तो 15 करोड़ घरों तक आने वाले कुछ सालों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जाएगा, जो जल मिशन के तहत होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको जल मिशन और ये जो भू जल योजना है इसे अलग अलग करके दिमाग में रखना होगा, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम यही करता है, आपको प्री में खास करके उलझाने की कोशिश करता है। ये भू जल अंडरग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, और वो जो जल मिशन है वो पेय जल से रिलेटेड है, लेकिन जो पेय जल होगा वो पाइपलाइन से पहुंचाने से संबंधित होगा, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। चूंकि अटल भूजल योजना अब लागू की गई है जो 7 राज्यों में की गई है, जिसके बारे में मैंने कल आपसे चर्चा भी की थी, तो अब आप इस टॉपिक को किस रूप में देखेंगे? देखिए, यहां बात भूजल योजना की हो रही है, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जब हम तैयारी करते हैं तो उसे हमें थोड़ा सा इनलार्ज करना पड़ता है। इनलार्ज करने का मतलब है कि हमें इसे टोटल जो हमारा जल संसाधन है उसके अंतर्गत देखना चाहिए, पूरे के पूरे जल संसाधन पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए, और जल संसाधन जो टॉपिक है उस पर हमारी तैयारी हो, तब जाकर के सिविल सर्विस की सही तैयारी हो पाती है। नो डाउट कि उसके तहत जो भू जल है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो मैं आप सबसे भू जल के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ साथ जो जल के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वे भी रखने जा रहा हूं। देखिए, जहां तक भू जल संसाधन की बात है, इसके बारे में आप जानते हैं कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कैसे धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ गिरता जा रहा है, और इसके बारे में मैं आपको एक तथ्य देना चाहूंगा, एक संदर्भ देना चाहूंगा जो बहुत काम का है, कि जो नासा है, अमेरिका का जो संस्थान है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसने कुछ समय पहले एक आंकड़ा दिया है, और उसमें उसने बताया है कि भारत का जो भूमिगत जल का स्तर है, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, वो हर साल 0.3 मीटर की तेज गति के साथ गिरता जा रहा है। 0.3 मीटर, आप समझ लीजिए कि लगभग एक फिट की तेज गति के साथ नीचे गिरता जा रहा है, जो बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है, ये आपके दिमाग में दर्ज होना चाहिए। अब जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, देखिए वो जल के बारे में क्या कहती है, और इसको लेकर के कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं, तो मैं उधर आपका ध्यान थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा। इसके बारे में बकायदे मानक हैं। मानक यह है कि किसी भी देश में जो प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता है, जिसे हम कहते हैं पर कैपिटा वाटर अवेबिलिटी, यदि वह 1700 क्यूबिक मीटर से कम है, 1700 क्यूबिक मीटर, तो इसे हम वाटर स्ट्रेस्ड की स्थिति कहते हैं। वाटर स्ट्रेस्ड यानी कि जल का दबाव है, जल के तनाव की स्थिति है 1700 क्यूबिक मीटर, और यदि यह 1000 क्यूबिक मीटर है तो इसे वाटर स्केयर कहा जाता है, जल की दुर्लभता, या यूं कह लीजिए कि जल की कमी। तो 1700 क्यूबिक मीटर से जल का दबाव, यानी कि अब जल आप सतर्क हो जाइए, और अगर 1000 पर पहुंच गए हैं तो वहां जल की दुर्लभता की स्थिति आ गई है। भारत में क्या स्थिति है? भारत में जो स्थिति है, जब हमारी 1951 के आंकड़ों के आधार पर जो हमारी प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता थी, वो सोच करके देखिए, 5177 थी, 5177 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति। अब आप सोचिए कि 2011 की जब जनगणना हुई है तो ये मोटे तौर पर 5100 घट करके 1500 हो गई है, 1500 एग्जैक्ट डेटा है, 1545 क्यूबिक मीटर, 1545। अब आप देखिए कि इससे पहले 1700 में जब हम होते हैं तो वाटर स्ट्रेस्ड की स्थिति हो जाती है, और अब हम 1545 में, यानी कि वाटर स्ट्रेस्ड की स्थिति में हम हैं। और ये प्रिडिक्ट किया गया है कि अगर यही स्थिति रही तो भारत बहुत गहरे जल संकट की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि अगर हम इस डेटा को जो मैंने अभी आपको 1951 और 2011 के बारे में बताया, इसके आधार पर आप सोचिए कि लगभग लगभग जो जल की उपलब्धता है वो 60 वर्षों के दौरान 70% कम हो गई है। 70% जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। हमारे यहां जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है, प्रति व्यक्ति जल भंडारण की जो क्षमता है, वो 1500 क्यूबिक मीटर है, 1500 क्यूबिक मीटर। और सोच करके देखिए कि अमेरिका में यही क्षमता 5961 है, यानी कि आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 6000 है, और चीन में 2486 है, यानी कि 2500 है, और हमारे यहां 1500 है। और उसका कारण क्या है? जो उसका सबसे बड़ा कारण है ये है कि हमारे यहां जो जनसंख्या है विश्व की वो 16% है, 16%, और जबकि ताजे जल की जो मात्रा है वो केवल 4% है। तो ताजे जल की मात्रा 4%, जो जनसंख्या है वो विश्व का 16%, तो स्वाभाविक तौर पर जो प्रति व्यक्ति जल भंडारण की क्षमता होगी वह कम होनी ही होनी है। हमारे यहां जो जल उपयोग की स्थिति है दोस्तों, 83% जो पानी का हम उपयोग करते हैं केवल सिंचाई के लिए, सोच करके दे, एरिगेशन के लिए। और इस एरिगेशन में भी जो 2018-2019 का जो आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उसमें ये पाया गया है कि गेहूं और चावल जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में बोई जाती है उसमें जो हम प्रति इकाई जल का उपयोग करते हैं चीन की तुलना में दुगना और ब्राजील की तुलना में 4 गुना करते हैं। और मजेदार बात है कि जल का इतना उपयोग करने के बावजूद जो हमारा प्रति एकड़ उत्पादन है वो इन देशों की तुलना में आधे से भी कम है। इसका मतलब है कि जितने हम जल का उपयोग करते हैं उतने जल की आवश्यकता होती नहीं है, यानी कि हम जल का दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं। और ये जो दूसरा आंकड़ा है वो ये है फ्रेंड्स कि जो पूरा का पूरा जो पानी भारत में बरसता है वर्षा के जरिए जो प्राप्त होता है उसका हम केवल 10% संचय कर पाते हैं, बाकी पूरा का पूरा पानी बहकर समुद्रों में चला जाता है। 90% ऑलमोस्ट पानी समुद्रों में चला जा रहा है। तो ये जो भूजल स्तर की बात है, बढ़ाने की बात है, तो इसका जो सबसे बड़ा जो आधार हो सकता है वो है भूजल, बहते हुए पानी का संचय करके उसे भूमि के अंदर पहुंचाना। और यहां एक तथ्य और भी है, चूंकि धीरे धीरे सिंचाई के लिए जो पंप होते हैं ट्यूबवेल वगैरह की जो प्रथा है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो अब ये कैलकुलेट किया गया है कि देखिए जब आप ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हैं तो उससे कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो उससे जो पूरे हमारे देश में जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसमें जो ट्यूबवेल का योगदान है वो है 7%, यानी कि भूजल का जो हम उपयोग कर रहे हैं उसे 7% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है। मैं तो जानबूझकर के मैंने थोड़े से आपको ऐसे तथ्य दिए हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ आप अपनी बात को वैज्ञानिक तरीके से रख सकें भूजल से संबंधित बात को, यह सोच करके मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं। तो दोस्तों अब मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, आवंग सिंह भाटी जोधपुर राजस्थान से, हेमंत चौहान रामपुर उत्तर प्रदेश से, और प्रीतेश कुमार नेवाई राजस्थान से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही, इससे पहले कि मैं आज के डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की घोषणा करूं, 2 दिनों के लिए आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।